ओम शांति। एक पाठशाला में दो शरारती बच्चे एक बार सोचते हैं कि क्या करें जिससे पढ़ाई पढ़नी न पड़े, और क्या करें जिससे स्कूल में तो आए परंतु पढ़ाई न करे, कुछ और करे। तो दोनों जब ये सोच रहे होते तो उनमें से एक बच्चे को पाठशाला के बाहर तीन बकरियां दिखती है और वो कहता है, मेरे मन में एक बहुत अच्छी योजना बन रही है, इन तीन बकरियों के आधार से कल हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दूसरा मित्र कहता है, वो कैसे? वो कहता है कि पहले इन तीन बकरियों को कैंपस के अंदर लेके आना है। तो स्कूल पूरी होती है, सब विद्यार्थी चले जाते हैं, पर ये दो बच्चे पढ़ाई के बहाने से वहीं रुकते हैं। और जब सब चले जाते हैं तो उन तीन बकरियों को पकड़कर घसीटते हुए उस पाठशाला के परिसर में ले आते हैं। और फिर जो पहला होता है वो तीन बकरियों के ऊपर एक काला दाग बनाता है। पहले बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 1, दूसरे बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 2, और तीसरी बकरी के ऊपर लिखता है नंबर 4। और वो दोनों चले जाते हैं और दूसरे दिन भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। और जैसे ही आते हैं तो शोरगुल मच जाता है कि स्कूल में बकरियां, और सभी बच्चे उन बकरियों को पकड़ने में लगते हैं। कोई कहता है 1 नंबर की मिल गई है, कोई कहता है 4 नंबर की मिल गई है, और कोई कहता है 2 नंबर की मिल गई है, अब केवल एक ही बकरी बाकी है 3 नंबर की। और सारे उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं। विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो भी बकरियां उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं। उसमें से जो स्कूल का स्टाफ होता है और जो दूसरे कर्मचारी होते हैं वो भी इस कार्य में लग जाते हैं। कोई कोई स्कूल के छत पर चढ़ जाते हैं, शायद वहां हो वो 3 नंबर की बकरी। क्लास के सभी विद्यार्थी, मॉनिटर और पूरा दिन उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में लग जाता है, और इन दो विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। क्यों नहीं ढूंढ पाए 3 नंबर की बकरी? क्योंकि वो है ही नहीं। और सारी मनुष्यता और सारा समाज, मनुष्य जाति जीवन भर उसी 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में जीवन लगा देते हैं, जो कि है ही नहीं। वो मृग मरीचिका है और अपनी इच्छाओं की इस मृग तृष्णा के पीछे जीवन व्यतीत हो जाता है, दुखों में, पीड़ा में, समस्याओं में, ढूंढने में, उसको ढूंढने में जो है ही नहीं। परंतु ब्रह्म ऐसा होता है कि वो है, और उसकी खोज, और यही सब समस्या का कारण है। कई सारे कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण कि उसकी खोज जादू है जो है नहीं, उस सुख की खोज उस संबंध में ढूंढ रहे हैं, उस सुख को जो उस संबंध में है ही नहीं, उस अतिंद्रिय सुख को इंद्रिय सुखों में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं, उस परमात्म प्रेम को व्यक्तियों के प्रेम में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं, उस अलौकिक अनुभूतियों को सांसारिक प्राप्तियों में खोजा जा रहा है जो कि वहां है ही नहीं, परंतु यही पीड़ा है, यही समस्या का एक कारण है। अंदर की ही कमजोरी कोई एक बाहर क्या बन जाती है, समस्या। अंदर की ही कमजोरी से उत्पन्न जो वस्तु है उसी का नाम समस्या है, और ये समस्या व्यक्ति और परिस्थिति के रूप में सामने आती है, परंतु है ही हमारी सेल्फ क्रिएटेड स्वरचित। जितनी भी समस्याएं जीवन में है तो शायद उनके माता पिता हम ही हैं, हमने ही जन्म दिया है, हमारी ही कोई एक कमजोरी है, वो मोह हो सकता है, वो लगाव हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, क्रोध या फिर कोई इच्छा, कोई तृष्णा, कोई विकार, कोई सूक्ष्म भय, कोई अज्ञात कारण जो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता, परंतु उसके गहरे अंतरतम में वो छिपा है और उसी का प्रोजेक्शन प्रक्षेपण वो कमजोरी का ही बाह्य स्वरूप समस्या है। तो बाबा ने इस विषय पर आज कुछ ऐसी बातें कही है जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही गहरी बातें हैं। कमजोरी कमजोरी की रचना है, समस्या कमजोर मन की रचना है, न रचना रचो और न ही समय गवाओ। खुद ही रचना रचते हैं और फिर समय गवाते हैं। किसी अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था कि सुबह सुबह मास्टर ब्रह्मा बन जाओ और शक्तिशाली संकल्प रचो, श्रेष्ठ संकल्प रचो, दिन भर मास्टर विष्णु बन जाओ, उन संकल्पों की पालना करो और रात को सोने से पहले मास्टर शंकर बन जाओ। जो कुछ व्यर्थ चला और जो कुछ व्यर्थ निगेटिव चला उसको शंकर के मानिंद भस्म कर दो, और फिर जब सुबह दूसरे दिन उठो तो जैसे कोई तरोताजा फरिश्ता, और बाबा के शब्दों में ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे, ऐसी दिनचर्या की शुरुआत करो। कैसी? ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे, अभी अभी पधारे, नए तरोताजे फ्रेश। पिछले दिन का इस दिन पर कोई प्रभाव नहीं। रात को सोने की जो स्थिति है मास्टर शंकर की हो, तो समस्या स्वरचित है। अगर समस्या स्वरचित है तो उत्तर भी कहां से आएगा? स्वयं से। मन की ही किसी गुफा में उत्तर छिपा है जिसकी तलाश हम बाहर कर रहे हैं। और इस रचना को बाबा ने तीन नाम दिए हैं समस्या को। कौन कौन से? समस्या को कौन से तीन नाम दिए हैं? एक तो मिकी माउस रचना है। समस्या क्या है? रचना, कमजोरी से उत्पन्न हुई रचना, इसको नाम दिया मिकी माउस। क्या करते रहता है वो? बहुत भगाता है। तीसरे नंबर का मिकी माउस बहुत उठा पटक करता है, बहुत परेशान करता है। निकला कहां से है? अंदर से। और काटते हैं कौन? लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस, बिच्छू और टिंडन बहुत काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं, परेशान करते हैं। अधिकारी की जगह क्या बना देते हैं? भक्त बना देते हैं। मदद करो, पार लगाओ, अधिकारी नहीं बनने देते। दुखी कर देते हैं, मूड ऑफ के। कौन से आंसू? गरम गरम आंसू। सुबह सुबह भक्त मंदिर में आ जाए किसी देवी के, पर्दा खुल जाए और देवी नाराज रूठी हुई, मूड ऑफ और आंसू बह रहे हैं। वो तो आया था अपनी समस्याएं लेकर कि आज मां से ये बातें बताऊंगा और ये हल लूंगा। तो देखा तो क्या नजारा दिखा उसे? देवी क्या कर रही है? रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि बाजू वाली देवी ने उसको बहुत डिस्टर्ब किया है। बाजू वाला जो मंदिर की जो देवी है काली माँ, उसने दुर्गा माँ को बहुत परेशान किया है। ये गणेश मेरे से आगे कैसे जा रहा है? सोच रही है दुर्गा माँ, इसलिए मूड ऑफ है, बहुत ही नाराज है, आंसू टपक रहे हैं। तो भक्त क्या करेगा फिर ये देखकर? तो भक्त भी रोना चालू कर देगा। बाबा ने कहा घबराएंगे, तुम इष्ट हो, सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियां हो तुम। क्या हो? चैतन्य वरदानी महादानी मूर्तियां, चैतन्य फरिश्ते हो तुम। तो समस्या का समाधान भीतर है, क्योंकि समस्या की गंगोत्री आंतरिक है, अंदर के ही किसी स्रोत से, किसी कमजोरी से, किसी भय से, किसी वासना से, किसी विकार से, किसी व्यर्थ से, किसी निगेटिव से उत्पन्न हो रही है। तो बाबा ने कहा मिकी माउस नहीं बनो, स्वयं के उत्तर खुद खोजने हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर मूर्ति है और सारी समस्याओं का समाधान अमृत वेला है और सारी समस्याएं पवित्रता के सामने टिक नहीं सकती, इतनी शक्ति उसमें है। एक योगी संसार से बहुत परेशान हो गया, संसार के लोगों से। रोज उसके पास हजारों समस्याएं लेकर आते थे और उसकी साधना में विघ्न डालते थे। एकांत उसे चाहिए था, वो देते नहीं थे। सोचा यहां से छोड़कर गांव से दूर हिमालय की किसी पहाड़ी में चला जाऊं और वहां चला जाकर एकांत में साधना करने लगता है। परंतु लोग बहुत होशियार होते हैं, योगी को तो ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का अंबार लगा है, तो कैसे तो भी कर कर उस योगी को ढूंढ लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और वहां डेरा लगा देते हैं। परंतु योगी कहता है कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा, परंतु भीड़ बढ़ती जाती है, 3 दिन तक लोग वहीं उसकी गुफा के बाहर अपनी अपनी समस्याएं लेकर, गृहस्थ की, संसार की। तब फिर वो सोचता है एक बार इनके सारे प्रश्नों का हल मैं दे दूं। बाहर निकलता है, कहता है कि आज जो भी आपके प्रश्न है पूछो, मैं हल दे दूंगा, पर इसके बाद ये बात किसी को मत कहना कि मैं यहां रहता हूं, क्योंकि मुझे एकांत में और मौन में तपस्या करनी है। तो वो पूछने लगता है तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, गृहस्थ, और चालू करता है अपनी समस्या बताने। परंतु बाकी लोग सोचते हैं ये अपनी बात इतनी लंबी कर रहा है, मेरा टाइम नंबर कब आएगा, और ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। दूसरा बोलने लगता है बीच में, तीसरा बोलने लगता है, और सब बोलने लगते हैं अपनी अपनी समस्याएं। योगी सोचता है अभी बंद करो आप लोग सब, एक काम करो, आपके जो भी प्रश्न है एक पर्ची पर लिख के दे दो। सब अपने अपने प्रश्न पर्ची पर लिखते, एक टोकरी घुमाता है और कहता है सब इसमें डाल दो, और वो मिक्स कर देता है और फिर कहता है अब ये टोकरी घुमाओ, इसमें से कोई भी पर्ची ले लो, और ये सोचो कि ये जो समस्या है किसी और की जो है, क्या मेरी समस्या इससे बड़ी है क्या। और वो घुमाता है, हर एक लेता है पर्ची और देखता है इस व्यक्ति की समस्या तो बहुत गंभीर है, मेरी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और वो योगी कहता है अगर तुम चाहो तो जो समस्या दूसरे की है मैं तुमको दे सकता हूं, तुम्हारे समस्या के एक्सचेंज में। तो वो सोचने लगते हैं हमारी अपनी समस्या ठीक है, चित परिचित तो है, दूसरों की समस्या पता नहीं कैसी है, हमारे घर के जो झगड़े हैं, हमारे घर के जो लोग हैं उनको हम जानते तो हैं, और ये परिस्थिति, ये समस्या, ये प्रॉब्लम कई सालों से चल रही है, तो ये तो जानी पहचानी सी है। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वापस जाते हैं कि दूसरों की समस्याएं हमारी समस्याओं से बड़ी है, और उसके बाद उसके पास कोई नहीं आता है। एक कारण समस्या का है कंपैरिजन, तुलना। हम ड्रामा का ये राज शायद भूल रहे हैं कि हरेक का पार्ट अपना अपना, हरेक में ताकत अपनी अपनी, कोई 200 रुपए की काठी है तो कोई 2 रुपए की, सबके कर्म भोग अपने अपने, सबके हिसाब अपने अपने, सबकी बीमारियां अपनी अपनी, सबकी विशेषताएं, प्रारब्ध अपना अपना, कार्मिक अकाउंट्स अलग अलग है सबके। एक समस्या का कारण तो यही है कि हम पाते हैं कि दूसरा मुझसे अधिक सुखी है, उसे ज्यादा प्राप्ति है, मुझे कम प्राप्ति है। तो समस्या का समाधान, बाबा ने कहा समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं। यहां से दृढ़ संकल्प करके जाना है, कौन सा दृढ़ संकल्प करके जाना है मधुबन भूमि से, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे और दूसरों के लिए भी समाधान स्वरूप बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प करके जाना है। कहां से जाना है ये दृढ़ संकल्प करके, कौन सी भूमि है ये, परिवर्तन भूमि। एक एक शब्द के अर्थ में यदि स्थित हो जाए तो दूसरा प्रश्न खड़ा होगा, यदि मधुबन परिवर्तन भूमि है तो हम इतने दिनों से यहां पर हैं और सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन आया। मधुबन समर्थ भूमि है तो मैं कितना समर्थ बना हूं, मधुबन श्रेष्ठ संघ की भूमि है, हमने स्वयं को श्रेष्ठ संघ के रंग में कितना रंगा है। मधुबन सर्व प्राप्ति की अनुभूति करने की भूमि है, हमने कितना अनुभव किया है। मधुबन वरदानी भूमि है। बाबा ने कहा तुम्हें वरदान देने पड़ेंगे, एक तरफ विनाश की मशीनरी तेज होगी और दूसरी तरफ वरदानों की। कौन सा वरदान देना पड़ेगा आत्माओं को? आत्माएं भूखी है, प्यासी है, किस चीज के लिए? मुक्ति के लिए। तुम्हें आत्माओं को मुक्ति देनी पड़ेगी, भीख मांग रही है मुक्ति के लिए। इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतने संताप, घर घर में, राष्ट्र राष्ट्र में, संसार में, पूरे विश्व में है। मुक्ति चाहती है, और मुक्त कर वो सकेंगे जो स्वयं मुक्त है। इसके लिए बाबा ने मुरली के शुरुआत में कितनी सारी चेकिंग की पॉइंट्स बताई। इस भूमि पर आए हो तो अप्राप्त तो नहीं रहे, कोई अप्राप्ति तो नहीं रही, सारे खजानों से अपने आप को भरा है, सारे खजाने अंदर धारण किए हैं, यहां के खजाने ले जाकर वहां सेवा केंद्र पर किस बात के निमित्त बने हो? देने के, महादानी बनने के निमित्त बने हो। समस्या स्वरूप तो नहीं, समाधान स्वरूप हो। इतने प्रश्न पूछे मुरली के शुरुआत में। तो हमारे कर्तव्य बहुत सारे हैं। कर्तव्यों की स्मृति, दायित्व का आभास कि हमें बहुत सारे कार्य करने हैं। अलबेलेपन से मुक्त करेगा। एक है सोल कॉन्शियस, दूसरा है गॉड कॉन्शियस, तीसरा है बॉडी कॉन्शियस, और चौथा है अनकॉन्शियस। कुछ कुछ आत्माएं अनकॉन्शियस है, बेहोश, खबर ही नहीं कौन सा युग चालू है, कौन सा समय चालू है, हमें क्या करना है। संसार की आत्माओं की तीन बातें बाबा ने बताई, तीन प्रकार की आत्माएं। पहली आत्माएं कहां जाती है? तीर्थ यात्रा पर जाती है, यथाशक्ति जहां जा सकती है, यथाशक्ति यथा फल। दूसरी आत्माएं कहां जाती है? मंदिरों में। और तीसरी आत्माएं घर में बैठे बैठे, परंतु उनके पास स्नेह है और दृढ़ संकल्प की शक्ति है, उससे वो तुम आत्माओं का आह्वान कर रही है। ये तीन प्रकार की आत्माएं संसार में है, और वो तीन स्थान कौन से है? ज्ञान के मंदिर अर्थात सेवा केंद्र, तीर्थ अर्थात मधुबन भूमि, और घर अर्थात जहां वो है। बाबा ने ये भी कहा कि संसार में तीर्थ स्थानों में और मंदिर में जाते हैं, वो भी कैसे जाते हैं? स्वार्थवश। वो भी क्या करते हैं? जाकर दिखावा। इसके लिए शक्ति नहीं भर रही है। सब जगह जा रहे हैं, दान पुण्य करते हैं, कथाएं सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुओं की शरण शरण में जाते हैं, परंतु दुख तो जस का तस, संस्कार तो जरा भी नहीं बदले, वही पीड़ा, वही दर्द। हमें आत्माओं को मुक्ति देनी है। कितना बड़ा काम है ये। उसके लिए बाबा ने बहुत सारी स्थितियों का वर्णन किया है। एक तो कहा भरपूर अवस्था, दूसरी जगह कहा वरदानी महादानी, कहीं पर कहा चैतन्य मूर्तियां, कहीं पर कहा कर्मातीत और वानप्रस्थ, कहीं पर कहा एवर रेडी। बहुत सारी अवस्थाओं का वर्णन है मुरली में। ये हमें करना है। तीर्थ यात्रा कितना भी करते हैं, शक्ति कहां चली जाती है? क्या जैसे संसार के लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी तो नहीं करते? सेंटर पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, परंतु संस्कार तो वो के वो। जो भक्तों की अवस्था बताई है वो ब्राह्मणों की अवस्था तो नहीं? विचारणीय प्रश्न है। यदि कोई मधुबन में रहते हैं और मधुबन में सेवा करते हैं और मधुबन में सेवाधारी बन कर आते हैं, मधुबन अर्थात ये जो दिखाई दे रहा है सर्वस्व सब कुछ, कोई एक स्थान मधुबन नहीं है, सारी शाखाएं हैं मधुबन की। यदि इस भूमि में रहकर भी हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं, वो समाधान स्वरूप हम नहीं और समस्या स्वरूप बनकर बैठे हैं यहां पर, फ्रस्ट्रेशन इन मधुबन इज फ्रस्ट्रेशन एवरीवेयर। जो यहां संतुष्ट नहीं हो सकता वो संसार में कहां संतुष्ट होगा? जो भगवान के दर पर संतुष्ट नहीं वो संसार में और किस दर पर संतुष्ट होगा? जो यहां डिस्टर्ब वो शायद संसार में हर जगह डिस्टर्ब होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस का कारण कोई व्यक्ति और परिस्थिति नहीं। कौन है? हम स्वयं। हमारे अंदर कोई एक ऐसी कमजोरी बैठी है जो जा नहीं रही है। एक संत मंडली तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। वो चाहते हैं कि एक संत को लेके जाए, वो संत कहता है मैं नहीं आ सकता, अपनी असमर्थता जताता है, परंतु हाँ आप लोग जा रहे हो मेरी तरफ से एक काम करना, मेरे पास एक बहुत बड़ा कद्दू है, उस कद्दू को लेके जाओ और जहां जहां तीर्थ यात्राएं करोगे पानी में इसको भी डुबोना और जिस जिस देवता का दर्शन करोगे इसको भी कराना। पुराने जमाने में जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो बहुत लंबा सफर होता था, कई जगह रुकना पड़ता था, कई सारे अनुभव लोगों को आते थे, महीनों लग जाते थे एक तीर्थ यात्रा में। तो वो लोग उस कद्दू को लेके जाते हर तीर्थ स्थान पर, उसको पानी में डुबोते हैं, दर्शन कराते हैं, वापस आते हैं। तो उस संत के घर पहुंचते वो संत कहता है यात्रा कैसी रही? वो कहते हैं बहुत अच्छी रही। वो कहते हैं आज आप सबको मेरे यहां पर प्रतिभोज भोजन के लिए आना है, और भोजन में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और वो जो कद्दू होता है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है और वो बड़ा ही खट्टा कद्दू होता है, कटु। और जैसे ही वो लोग खाने लगते हैं वो कहते हैं ये कौन सा कद्दू है, ऐसी भी कोई सब्जी होती है? वो कहता है ये वही कद्दू है जिसको आप लेके गए थे, इस कद्दू ने हर तीर्थ स्थान में डुबकी लगाई है, हर देवता का दर्शन किया है। और एकदम से उनको ध्यान आता है ये तो हमारे ऊपर व्यंग हुआ, ये तो हमारी ही स्थिति का गायन है, हमने इतनी सारी तीर्थ यात्राएं की परंतु अंदर के विकार तो वैसे ही है, अंदर की कटुता तो वैसी ही है, अंदर के संस्कार तो परिवर्तन हुए ही नहीं है। मधुबन में आ गए, मधुबन में हम सेवा की, परंतु अंदर के विकार सूक्ष्म कमजोरियों को नहीं जीता, तो हमारी स्थिति उसी कद्दू के जैसी है, कड़वा ही रह गया। कितना भी अमृत वेला अच्छा किया, मुरली भी सुन ली, परंतु दिनचर्या वैसी ही है, दिन भर में वही कटु शब्द है, वही कटु व्यवहार है, वो मिठास नहीं। तो यह संसार की आत्माओं की हालत का बाबा ने वर्णन किया। अब इनको क्या देना है? मुक्ति, मुक्ति का वर्षा देना है, मुक्ति का वरदान देना है। और कैसे देंगे? हम देंगे अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, वरदानी स्थिति से, महादानी स्थिति से, इष्ट देव स्वरूप स्थिति से। और जो समस्या स्वरूप बनकर है वो ये काम नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रश्न है जिस पर सभी को काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर जीवन में परिस्थिति है, समस्या है, तो उसको कैसे हल किया जाए। इसमें मनोविज्ञान में बहुत सारी स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहली स्टेप है कि जो समस्या है जीवन में उसको पहले स्पष्ट करो, वो क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। पहली स्टेप क्या है, जो समस्या है वो क्या है, क्योंकि कई बार समस्या हमें पता ही नहीं और हम भयभीत है, परेशान है। जब तक समस्या का पूरा ज्ञान नहीं तब तक उसे हल भी नहीं किया जा सकता। ये समस्या कोई संस्कार भी हो सकती है, ये समस्या कोई व्यक्ति हो सकता है, ये संस्कार, ये समस्या कोई परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप है, वो कहते हैं लिखो, समस्या को स्पष्ट करो कि जीवन में ये समस्या है, क्योंकि अभी वो अस्पष्ट है, धुंधली सी है, इसके लिए कुछ कर नहीं पाते उसके लिए, और लंबे समय से चल रही है। बाबा ने कहा लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। तो फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द सॉल्यूशन प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या के समाधान में। कौन सी समस्या पहले हल करनी है ये डिसाइड करना। यदि जीवन में चार समस्याएं, पांच समस्याएं, दस समस्याएं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है और सबसे पहले हल किसको करना है, प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता, वरीयता किसको दी जाए। अगर चार बातें हैं, जैसे किसी का अमृत वेला ही नहीं होता, दिनचर्या भी ठीक नहीं, मुरली का चिंतन नहीं होता, वो खुद डिसाइड करे इन तीन में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है और उस पर फिर काम करे। यदि चिंतन बिल्कुल रुक गया है, हो ही नहीं रहा है, मुरलियां चल रही है, भगवान कह रहा है कल की साकार मुरली थी, ज्ञान तुमको मिला है तो चिंतन चलता रहे, ज्ञान तुमको मिला है तो विचार सागर मंथन चलता रहे। उनका विचार सागर मंथन नहीं चल सकता क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला, तुमको ज्ञान मिला। रिलीजन इज माइट, धर्म को तुमने समझा इसलिए तुम ताकतवर हो। और आज की मुरली में तो समस्या के लिए बाबा ने बहुत ही कड़ा शब्द प्रयोग किया है। जो शब्द विकार के लिए प्रयोग किया जाता है पाप, वो समस्या स्वरूप के लिए प्रयोग किया है। जैसे विकार में पवित्रता के लिए कैसे दृढ़ संकल्पवान हो, कितना भी सहन करना पड़े, मार खाना पड़े, संकल्प स्वप्न में भी अगर अपवित्रता आ गई तो क्या समझते हो, पाप समझते हो ना। उसी तरह समस्या स्वरूप यदि जीवन है तो ये भी पाप है। समस्या के लिए पाप शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि जीवन समस्याओं से घिरा है, जीवन में कंप्लेंट ही कंप्लेंट है हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, बड़े ठीक नहीं, साथी ठीक नहीं, छोटे ठीक नहीं, ये सेवाई ठीक नहीं, दुनिया ही खराब है, सब हमारे साथ ही ऐसा होता है। एक जैन शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, कहता है ये दुनिया में सब कुछ खराब है, कोई ढंग का नहीं है, इस आश्रम में भी आपके आया था बड़ी आशाओं के साथ, पर यहां के लोग भी ठीक नहीं है, दूसरे साथी जो सन्यासी है वो भी ढंग के नहीं है, सब गड़बड़ है, अब क्या करूं आप ही बताओ, मैं तो यहां शांति के लिए आया था, संसार छोड़कर, मां बाप को छोड़कर, और यहां देखता हूं तो यहां पर भी वही। वो कहता है एक ग्लास लेकर आओ, ग्लास लेके आता है पानी का और एक मुट्ठी नमक देता है, कहता है डालो उसमें, घोलता है और कहता है पियो। वो पीता है, पूछता है कैसा है, कहता बहुत ज्यादा खारा। फिर कहता है वापस एक मुट्ठी नमक लो, अब चलो मेरे साथ, और उसको ले जाता है, एक बहुत स्वच्छ झील होती है, कहता है डालो इसमें, डालता है, कहता है अब पियो। वो पीता है, कैसा है, कहता है बहुत मीठा। पात्र कैसा है, ग्लास है या झील है। झील भव, पर नकी झील में जाके ये प्रयोग मत करना। संसार में चाहे कितनी ही कड़वाहट, कटुता, खारापन हो, अंदर क्या है, इतना विशाल हृदय अंदर से बनाया है, इतनी मिठास उसमें भरी है कि कितनी भी मुट्ठियां लाकर डाले लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक, पानी मीठा ही रहे। जीवन के अनुभव कितने ही कटु क्यों ना हो, परंतु ज्ञान हमारे पास इतना मीठा है, इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है कि कटुता नहीं होगी। महाभारत में दिखाया है पांडवों को पहले शुरुआत से लेकर अंत तक सहन करना ही पड़ा, करना पड़ा। राज्य का विभाजन हो गया हस्तिनापुर का, जब वापस आए तो बीच में वो भी स्वीकार कर लिया। दुर्योधन को हस्तिनापुर और पांडवों को क्या मिला, खंडवप्रस्थ, ओबड़ खाबड़, कटीला, पथरीला। चारों भाई युधिष्ठिर छोड़ के कहने लगे ये अन्याय है हमारे ऊपर, पर कृष्ण उनसे कहता है वही खंडवप्रस्थ तुम्हारी कर्म भूमि होगी, और वो लोग उसको क्या बना देते हैं, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर से कई गुना सुंदर। दिखाया है पांडवों ने शांति के लिए सहन किया, वो चाहते तो तभी विद्रोह कर सकते थे। पांडव अर्थात सहनशील, त्यागी, धर्मनिष्ठ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहली बात बताई, डिफाइन द प्रॉब्लम, उसको स्पष्ट करो। दूसरी बात बताई, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इन तीन में से, इन चार में से, इन पांच में से, लिखो उसको कि ये प्रॉब्लम है। कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, किसी संबंध में प्रॉब्लम है, योग युक्त तो नहीं रह पाते इसमें प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने, अव्यक्त वाणी नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा था, जब मधुबन में मकान बनाए जा रहे थे, बाबा ने कहा था एक एक ईंट योग युक्त होकर दीवार में लगाओ, एक एक ईंट योग युक्त होकर दीवार में लगाओ, ऐसी स्थिति में सेवा करो कि जो मकान बने उसमें योग के प्रकंपन हो। तीसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के टुकड़े टुकड़े करो। वो जो इतना जटिल है सोचो इसमें किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक ही प्रॉब्लम में हो सकती है कई सी परतें हैं, उनके विभाजन करो, सिंप्लीफाई करो, उसको सरल बनाओ, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में चौथी स्टेप है, मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता, इसकी लिस्ट बनानी। मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता, व्हाट आई नो, व्हाट आई डोंट नो। बहुत सारी बातें पता चलेगी मुझे पता ही नहीं है, जब तक पता नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। पांचवी स्टेप है प्लानिंग, पांचवी स्टेप है प्लान। उसमें भी दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी। एक प्लान बनाना, अगर वो फेल हो जाए तो दूसरा प्लान रेडी रहना चाहिए। ये मेन प्लान है, पर एक ऑप्शन बी भी रखा है कि अगर नहीं हुआ तो इसको भी ट्राई करेंगे। जैसे किसी का अमृत वेला रोज ही मिस होता है, या होता है परंतु नींद में, या होता है परंतु व्यर्थ और साधारण, और होता है परंतु उसमें शक्तिशाली कोई अनुभव नहीं। कुछ करना पड़ेगा, कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, रात को सोने की विधि ठीक करनी पड़ेगी, उठने की जो विधि, उठते ही जो पहले संकल्प है मास्टर ब्रह्मा, चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं हुआ तो और क्या कर सकते हैं? ये करते हुए भी नींद है, चलते फिरते घूमते फिरते कुछ सुनते सुनते बाबा की आवाज सुनते सुनते, या उठते ही कुछ पढ़ के या थोड़ा व्यायाम, कुछ तो करना पड़ेगा, प्लानिंग। और प्लानिंग होने के बाद सिक्स स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, उसको करना, और करने के बाद लास्ट स्टेप एक हफ्ते के बाद उसको रिव्यू करना, देखना कि ये हमने प्लानिंग की थी और ये हुआ, अब इसमें कहां खामियां हैं, कहां गड़बड़ है, और ये प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हुई है, कि वैसी ही अभी जैसे पहले थी। और जैसे बाबा ने कहा, हमारी प्रॉब्लम का कारण हमारी कमजोरी है। आइडेंटिफाई करना वो कौन सी कमजोरी है। हो सकता है कोई गहरा आलस का संस्कार है, हो सकता है कोई गहरी किसी व्यक्ति से डीप अटैचमेंट है, बहुत गहरी अटैचमेंट, ये भी हो सकता है फिजिकल अटैचमेंट है, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से यहां के संस्कार है, एक आत्मा को दूसरी आत्मा से गहरा अटैचमेंट, दोनों ही ज्ञानी, दोनों ही जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए पर फिर भी है, हो सकता है कई जन्म युगल रहे। परंतु देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, आत्मा समझ मुझको याद कर, ये महावाक्य है। हो सकता है कोई किसी की मां रही कई जन्म, और इस जन्म में दोनों ही ब्राह्मण है, गहरी अटैचमेंट। हो सकता है दो भाई थे कई जन्म, यहां पर गहरी अटैचमेंट, दोनों ही ज्ञानी, दोनों ही जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए फिर भी है। शत्रु होगे तो अटैचमेंट तो नहीं होगी, यहां कुछ और चालू रहेगा। परंतु इस ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है। जैसे ही कोई ब्राह्मण बनता है, आठ बातें उसके पीछे चालू चालू घेर लेती है उसको। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस नाम का एक प्राणी होता है अष्टबाहु, आठ भुजाएं होती है उसकी ऑक्टोपस की। तो ब्राह्मण जैसे ही जन्म लेता है, सबसे पहली बात खुशी, बहुत खुशी, भगवान मिल गया, ये करूं वो करूं, इतनी खुशी, सर्व प्राप्तियां हो गई, सर्व खजाने मिल गए। चार पॉजिटिव चीजें हैं, चार थोड़ी नेगेटिव है। तो सबसे पहले भगवान मिलते ही क्या हो जाता है, खुशी आ जाती है, ऐसा नशा चढ़ जाता है, कापारी खुशी, नारायणी नशा, रूहानी मस्ती, मौलाई मस्ती, इलाही मस्ती, नाखून से चोटी तक तुमको खुशी होनी चाहिए, ऐसी खुशी भरती है कि क्या करूं और क्या नहीं, भगवान जो मिल गया एक। तो जन्मते ही एक तो ये खुशी, दूसरा जन्मते ही सेवा, अब जो मुझे मिला है मुझे सबको देना है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, पकड़ पकड़ के जब तक बाप के वर्षे का अधिकारी नहीं बना देता शांत नहीं बैठूंगा, एक भी आत्मा छूटनी नहीं चाहिए। तो नशा चढ़ जाता है, कौन सा, सेवा का नशा, भयंकर नशा। और तीसरा ब्रह्मा भोजन, जैसे ही ब्राह्मण बनती है उसके साथ में ब्रह्मा भोजन आ ही जाता है। और उसकी भी उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। चौथी पॉजिटिव बात कौन सी होती है, वो अगले चार में रखेंगे उसको। और कौन सी होती होगी पॉजिटिव वाली चीज, खुशी मिल गई, सेवा आ गई, ब्रह्मा भोजन आ गया, और चौथा अगली बार अगले में आएगा, पहले अगले ले लेते हैं। अगले में जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण परिवार के साथ कड़ा हिसाब चालू हो जाता है, भयंकर। किसी किसी का थोड़े दिनों बाद उसका बीज तो वहीं बोया जाता है, ब्राह्मण बनते ही बीज तो बो गया और हिसाब चालू हो जाता है इधर। दूसरा और क्या होता है? साधन, साधन साथ साथ साधन भी आ जाते हैं। तीसरा क्या आ जाता है और? सूक्ष्म राजनीति, क्योंकि बीज यहीं बोया जाएगा। ये तीन इधर और ये तीन इधर, अब इधर का एक बचा है और उधर का एक बचा है, वो कौन सा? वो आप ढूंढना, ये होमवर्क। चार इधर है और चार इधर। तो समस्या समाधान, समाधान स्वरूप बनना है। और खुशी तो बहुत होनी चाहिए। न्यूयॉर्क ग्रुप से भी बाबा ने बात है कि अगर 10 चीजें उठाने को कहो तो बहुत भारी है, एक चीज उठानी है, एक रस रहना है, एक की याद में रहना है, तो सुख शांति शक्ति मिलेगी। विशेष आत्माएं, एक एक विशेष आत्माएं, एक एक महान आत्माएं, एक एक श्रेष्ठ आत्माएं। तो सारी मुरली को एक तरफ हम देखें, इसमें कुछ योग की ड्रिल छिपी हुई है। सबसे पहली ड्रिल तो है मधुबन के विषय में बाबा ने जो शब्द कहे, उनका अनुभव करना अमृत वेला, कि मैं कहां पर हूं? परिवर्तन भूमि में योग कर रही हूं। एक तो ये। दूसरी ड्रिल है कि मेरे जीवन की जो समस्या है, देखना आत्मा से एक मिकी माउस निकला और नाच रहा है। क्या कर रहा है? खेल कर रहा है समस्या, और धीरे धीरे भाग गया। मिकी माउस को भाग गया वो माउस, मिकी माउस अर्थात चूहा। जितनी समस्याएं एक एक निकल रही है उसको देखना है। पहले कहा था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये समस्या है और उसको देखना है, दूर वो भाग गई है, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। ये भी एक योग का प्रयोग है। तो मुरली से कुछ योग के प्रयोग निकालने हैं, मुरली का से कुछ चिंतन के टॉपिक्स निकालने हैं, मुरली से खुराक के लिए खुशी की पॉइंट्स निकालनी है, और मुरली से फरमान, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस क्या कहा बाबा ने। एक होता है श्रीमत, एक होता है फरमान। यज्ञ के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ है कि मुरली साकार मुरली के बाद जो नीचे वरदान लिखकर आता है, एक बार ये डिसाइड हुआ था कि वरदान नहीं रखेंगे, उसकी जगह फरमान लिख के भेजेंगे। तो 2 मास तक फरमान लिखकर भेजे गए, और 2 मास में इतने खत आए लोगों के, ब्राह्मण परिवार के, सब डर गए। फरमान, अरे बाप रे, और हमको तो याद ही नहीं रहा, ये तो भगवान का फरमान है। फरमान बड़ा कड़ा शब्द है। तो दो मास के बाद वापस चेंज करके वरदान आ गया। तो ऐसे कैसे कैसे ऐसे सदा काल के तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे रहम दिल बन भक्त और ब्राह्मण आत्माओं के प्रति सदा स्नेही सहयोगी आत्माओं को ऐसे समस्या परिवर्तक विश्व परिवर्तक समाधान स्वरूप आत्माओं को ऐसे कैसे? अब पूरी मुरली बताओ। मधुबन निवासी आत्माओं को ऐसे समर्थ भूमि पर आए हुए समर्थ आत्माओं को ऐसे फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को ऐसे संपन्न आत्माओं को वरदानी महामदानी चैतन्य मूर्तियों को ऐसे चैतन्य फरिश्तों को ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को ऐसे समर्थ आत्माओं को माताओं की तरफ से ऐसे काली ऐसे ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, बहुत काल के पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे समस्या समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप आत्माओं को ऐसे मूड ऑफ के गरम गरम आंसू नहीं बहाने वाले आत्माओं को, ऐसे मिकी माउस अपनी समस्या को न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बिच्छू टिंडुन जिसे न काटे ऐसी आत्माओं को, ऐसे बाल अवस्था से, ये भी पॉइंट रह गई है, बाबा ने कहा था ये समस्या स्वरूप अर्थात बाल अवस्था है, और युवा अवस्था कौन सी है, सेवा में चक्रवर्ती, दूसरी आत्माओं के लिए महा अनुभव कराने में महारथी, और मायाजीत बनने की विधि में महावीर आत्माओं को ऐसे ऐसे वानप्रस्थी कर्मातीत आत्माओं को, ऐसे अपने संपूर्ण फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाली आत्माओं को, संसार को मुक्ति देने वाली आत्माओं को घर बैठे ही उन्हें प्रत्यक्षता का अनुभूति होगी, तो ऐसी अनुभूति कराने वाली आत्माओं को, और डैश 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 आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।